आती है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? अव्यक्त क्रांति के वहन से विश्व को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा, तेरी सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। जंजीरों में कब बंधी ये तपती चिंगारियां? तेरे हर कदम पे साथ स्वयं भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। करवटे नहीं तुझे बदलना अब जमाना है। तेरे दम से ही ये जमी आसमान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है।
ओम शांति। साउथ में एक वर्तमान में एक संत है माता अमृतानंदमयी। उनके कुछ शिष्य ब्रह्मचारी शिष्य सेवा के लिए एक स्थान पर पहुंचे थे। वहां पर बहुत बड़ा भूकंप हुआ था नागापट्टिनम तमिलनाडु में, और वो सारे ब्रह्मचारीगण वहां पर सेवा कर रहे थे। उसमें से एक ब्रह्मचारी ने ये सोचा कि वहां से नजदीक लगभग 24 किलोमीटर एक सानेश्वर मंदिर है शिव का। बीच में वहां जाकर शिव के मंदिर में दर्शन करके आओ। इसके लिए वो ब्रह्मचारी उस मंदिर में पहुंचता है, पर वहां जाकर देखता है बहुत लंबी लाइन है, बहुत भीड़ है। वो भी लाइन में लग जाता है, परंतु वो लाइन इतनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है कि उसे बेचैनी होती है कि कब मैं जाऊं आगे। वो इधर देखता है, उधर देखता है, उसकी भावभंगिमाएं देखकर वहां जो सिक्योरिटी में पुलिस होती है उनको डाउट आता है कि ये क्या कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। पुलिस को लगता है कि ये कोई एक पिक पॉकेट पॉकेट मार है, और उसको पकड़ लेते हैं। वो अपने तरफ से सफाई देता है, परंतु पुलिस कन्विंस नहीं होती है, और उस ब्रह्मचारी को पकड़कर जेल में डाल देती है। जो उसके साथी ब्रह्मचारी होते हैं वो जब देखते हैं कि उनका एक मित्र है नहीं, उसे ढूंढने लगते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है ये लॉकअप में है। वहां के जो पुलिस सब इंस्पेक्टर होते हैं उनसे वो दूसरे ब्रह्मचारी मिलते हैं और उस जगह पर आने का पर्पस बताते हैं नागापट्टिनम में। वो इंस्पेक्टर कन्विंस हो जाता है और उस ब्रह्मचारी को छोड़ देता है। ये सारे ब्रह्मचारी अम्मा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये ब्रह्मचारी इतना श्रेष्ठ जीवन जी रहा है, संसार की सारे माया को, सारे भोग विलास को छोड़कर वो यहाँ आश्रम में आ गया है और सेवा के शुद्ध उद्देश्य से जो त्रासदी पीड़ित लोग हैं उनकी सेवा के लिए वो वहां गया और वहां सेवा कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये क्यों हो? तो माता अमृतानंद मैगी कहती है कि जीवन में भले हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे फिर भी अचानक ऐसे कुछ प्रसंग होंगे, कुछ प्लैनेट्स ग्रहचारी कोई एक इविल इन्फ्लुएंस का प्रभाव हम पर पड़ता है, परंतु ये जो ब्रह्मचारी था क्योंकि उसके पास पुण्य की पूंजी थी और एक अननोन ग्रेस परमात्मा की एक अज्ञात कृपा उसके साथ चल रही थी, इसलिए हो सकता है कि जो हिसाब किताब उसका कई वर्षों का था, लंबे समय का था, वो एक रात में ही पूरा हो गया, इसलिए उसे एक रात उस लॉकअप में गुजारनी पड़ी। एक्चुअली हो सकता है कि उसे लंबा समय उसका कोई पिछला कर्म, किसी और जन्म का पाप उसे भोगना था, परंतु इस जन्म के पुण्य की वजह से, इस जन्म के ब्रह्मचर्य की वजह से वो उस सारे प्रारब्ध से बच गया और उसका केवल 10% उसे भोगना पड़ा, ओनली 10%। इसके लिए दुख मत करो कि ऐसा क्यों हो, और जीवन में ऐसी परीक्षाएं आती रहेगी। और आ गई तो पास करके आगे बढ़ जाना है, ये नहीं सोचते रहना है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अब परीक्षाएं तो आएगी, नए नए पेपर्स आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, विघ्न आएंगे, ये सारे विघ्न, ये सारे पेपर्स, ये सारी परीक्षाएं, ये सारे अचानक के पेपर, सरप्राइज टेस्ट किस लिए होते हैं? हमारी परिपक्वता टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए। और अब तक का हमारा जो अध्यात्म का बेस है उसकी जांच पड़ताल होती है। कोई 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है और अचानक जीवन में पेपर आ जाए और वो हिल जाए, अर्थात फाउंडेशन ही इतना अभी मजबूत नहीं था, इसके लिए पेपर तो आएंगे, जैसे इस ब्रह्मचारी के साथ आया। क्या एक ब्रह्मचारी ये सोच सकता है कि उसे लॉकअप में रात गुजारनी पड़े? पर हुआ उसके साथ। तो जो परिस्थितियां हो रही है, आ रही है, उनके बहुत सारे कारण हैं, इस जन्म के, पिछले जन्मों के, कई जन्मों के, और कई बार ऐसी परिस्थितियां आएगी कि जो समझ में नहीं आएगा क्यों। वाई। इसलिए बाबा कहते क्यों कि क्यों नहीं लगाओ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, वो हो गया, उससे सीखो और आगे बढ़ जाओ। उससे क्या क्या सीख सकते हैं वो निकाल लो और आगे बढ़ जाओ। एक है जीवन की परिस्थितियों का पेपर, एक है लौकिक में जो पेपर देते हैं वो पेपर, और तीसरा है ये अलौकिक पेपर जो कि हम देंगे कल। बराबर 24 घंटे है। फलक तू गरज तू बरस तू धूप में छाव की एहसास तू जीत तू जान तू जहान तू होगा इतिहास का ताज तू पन्नों में रहेगा माजी के सबको लेना साथ जोड़ के आंधी और तूफान से भिड़े हौसलों की कश्ती न डूबे होगा इतिहास का ताज तू होगा इतिहास का ताज तू सामने फौज है क्योंकि इम्तहान की है घड़ी तू तेरा अस्त्र है तू ही तेरा शस्त्र है हर घड़ी फलक तू गरज तू बरस तू धूप में छाव का एहसास तू। दूसरा बाहर से कोई नहीं आएगा हमें मोटिवेट करने के लिए इंस्पायर करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खुद ही खुद के प्रेरक बनना है। तालियां बजाने वाले दूसरे कोई नहीं है, खुद ही खुद के लिए तालियां बजानी और शाबाशी देनी और आगे बढ़ना है। अब गिर गए अब फिर से उठो, जब जब गिरो फिर उठो। गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना खरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। आंधी और तूफान से भिड़े हौसलों की कश्ती ना डूबे होगा इतिहास का ताज तू। हमें इतिहास रचना है, इतिहास का ताज बनना है। सामने फौज क्योंकि इम्तहान की है घड़ी। तो पेपर कल है, आज का लास्ट डे। और जब पेपर होता है पेपर के कुछ घंटे पहले पढ़ना छोड़ देना पड़ता है। तो आज 5 बजे तक पढ़ लो, बाद में छोड़ देना। लास्ट मोमेंट तक पढ़ते नहीं रहना है, ये भी आ जाए वो भी आ जाए, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। जितना होता है 5 बजे तक कर लो, फिर उसके बाद में छोड़ देना। शाम को ही, आज शाम को तो परसों 12 मुरलिया की, कल 13 और आज बची हुई 13, और फिर 40 की 40 एक बार और थोड़ा देखना 2-3 मिनट में। तो जो भी एग्जाम देनी हो, चाहे लौकिक एग्जाम या ये अलौकिक एग्जाम, एक 3-4 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला अमृत वेला उस दिन का, पावरफुल अमृत वेला। और ये तो एग्जाम डायरेक्ट भगवान के ही महावाक्यों पर पेपर है। अगर जिसके महावाक्य है उसी के साथ जुड़ जाओ तो जिसने एग्जाम सेट किया है वही मुट्ठी में है। पर उसके बोल है, उसके वर्शन है, उसके महावाक्य है, उसी का पेपर है। तो उससे जुड़े रहना। और वो जो एग्जाम का 1 घंटा होगा जो कल भी कहा था, परसों भी कहा था, इट शुड बिकम मेडिटेशन. एक घंटे का वो क्या बन जाए? मेडिटेशन बन जाए. एक एक वाक्य पढ़ते हुए सोचो, मैं भगवान के सामने बैठा हूं और वो ये महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, और उसमें से नीचे चार ऑप्शंस है, तो हमारी नजर बराबर उस पर ही जाएगी जो राइट है. सारी शक्तियों का आह्वान करो, और उसमें भी सबसे ज्यादा निर्णय शक्ति, जहां निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है. पूरे जीवन भर हम क्या करते हैं? डिसीजन ही लेते हैं ना. पूरे दिन भर क्या करते हैं? डिसीजन ही लेते हैं. क्लास सुननी है नहीं सुननी है, क्लास करना है नहीं करना है, होमवर्क करना है नहीं करना है, मुरली पढ़नी है नहीं पढ़नी है, सोना है एक्सरसाइज करना है, डिसीजन है. हर चीज का डिसीजन है. पेपर देना है नहीं देना है, खाना है कि नहीं खाना है, पीना है कि नहीं पीना है, क्लास में क्या करना है, सोना है क्या करना है, जो भी. सारा जीवन, एक एक पल, एक एक मिनट इज अबाउट डिसीजंस. इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं. और कई लोगों का जीवन इनडिसीजन में, अनिर्णय में ही बीत जाता है. कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते करना क्या है. अनिर्णय की अवस्था, शेक्सपियर के हैमलेट की तरह, टू बी और नॉट टू बी. तो सबसे पहला, कल का अमृत वेला बहुत पावरफुल. दूसरा, बी रिलैक्स्ड. रिलैक्सेशन इज रिकलेक्शन. जितना मन शांत होगा, रिलैक्स्ड होगा, उतनी कोई भी परिस्थिति का हम सामना कर सकते हैं, चाहे वो ये पेपर हो, लौकिक का पेपर हो, या जीवन की परिस्थिति का पेपर हो, तीनों ही पेपर. और जब मन में बहुत उथल पुथल चालू रहती है, वहां बहुत चालू होता है संकल्पों का, तब उस कंफ्यूजन में जो आता है वो भी नीचे दब जाता है. इसके लिए टू मच एक्साइटमेंट नहीं चाहिए. अंदर से शांत, स्थिर. तीसरा, कॉन्फिडेंस, विश्वास. हमने जो पढ़ा है, पढ़ाई पूरी हो गई है, हमने अच्छे से पढ़ा है, अपने पर विश्वास कि एक बार तो सारी मुरलियां पढ़ के हो गई है. आई ट्रस्ट माई मेमोरी, मुझे टाइम पर बराबर याद आएगा. कौन सा प्रश्न कहां से आएगा वो पता नहीं, परंतु जो भी प्रश्न आएगा वो मेरा पढ़ा हुआ होगा और मुझे याद आएगा. ये विश्वास, सो कॉन्फिडेंस. चाहे लौकिक एग्जाम चाहे अलौकिक एग्जाम. इसके लिए कल भी कहा था, परसों, प्रिपेयर अर्ली, लंबे समय पहले से पढ़ाई की तैयारियां चालू कर देनी है. तो अभी हमारी 1970s की 40 मुरलियां हो गई है, नेक्स्ट मास से 71 की मुरलियां चालू होगी, और वो है 54, पोर्शन ज्यादा है. और हमें ये दिसंबर 31st तक सारी मुरलियां पूरी करनी है. कितने साल की? 48 ईयर्स की मुरलियां. तो अभी एक साल की जो मुरलियां उस पर एग्जाम है, आगे जाके दो दो साल, तीन तीन साल, चार चार साल और पांच पांच साल. अभी हम पहले एक एक मुरली पढ़ते थे, फिर दो दो चालू किया, फिर तीन तीन, फिर चार चार, फिर तेरह तेरह, और फिर आगे जाके 15-15, 20-20 मुरलियां एक दिन रिवाइज करनी होगी. तो इतनी स्पीड हमको अपनी बढ़ानी है. एक तरफ है स्पीड, एक तरफ है एक्यूरेसी, एक तरफ है अंडरस्टैंडिंग, एक तरफ है धारणा. समझ कितना रहा है, धारण कितना कर रहे, स्पीड कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है. धीरे धीरे सभी चीजों पर काम करते जाना है. एक्सपर्ट जो होता है ना, वो कैसा होता है? एक तो किसी को कोई देखता है तो कहता है, कैसे ये कैसे कर रहे है. जैसे गुरुकुल जो होता था वैदिक काल में, उसमें शतावधान एक क्रिया होती थी, वो कराते थे. शतावधान क्या होता है? 100 चीजें एक साथ करना. जैसे शिष्य बैठा हुआ है, उसको किताब दे रहे है, वो पढ़ रहा है श्लोक, ठीक है, पीछे से एक व्यक्ति घंटी बजा रहा है, वो भी काउंट करना है कितनी बार बज रही है. उसके सिर पर वो जो चोटी है ना, उसके सिर पर ऊपर एक तेल का घड़ा लटका हुआ है, वो तेल की बूंदे गिर रही, वो भी काउंट करनी है कितनी गिरी. पीछे जो बेल बज रही है वो भी, साथ में जो श्लोक पढ़ रहा है वो भी उसे याद रहना चाहिए। ऐसी 100 चीजें एक साथ हो रही है। शतावधान, डूइंग 100 थिंग्स एट वन टाइम, मल्टीटास्किंग, ये उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और गुरुकुल के वो जो छात्र थे सब याद हो जाता था उनको। तब कुछ इंटरनेट कुछ भी नहीं था, सर्फिंग नहीं था, गूगल नहीं था, कुछ नहीं था, कैसे रिट्रीव कर सकते थे इन्फॉर्मेशन? तो लिखते थे क्या? लिखते भी इतने नहीं थे। हमारे पास अभी प्रिंट आउट है, प्रिंटर है, तब क्या था? कुछ था क्या? क्यों इतना रिटेंशन पावर कहां से था उन गुरुकुल के सात छात्रों में? क्योंकि पढ़ाई ब्रह्मचर्य में की जाती है, इसलिए ब्रह्मचर्य की शक्ति का संबंध सीधा मेमोरी पावर से है। ट्रेनिंग से भी है, पर मूल आधार जो है उसका वो है ब्रह्मचर्य। द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू रिमेंबर। जितना जितना मन शुद्ध होगा उसकी रिटेंशन पावर, उसकी कैप्चरिंग पावर उतनी बढ़ती जाएगी। इसके लिए गुरुकुल के वो छात्र ये सारी क्रियाएं कर सकते थे और उनके लिए सहज था वो, बहुत सहज। एक साथ, ये तो हमने 2-3 बातें बताई, सोचो ऐसी 100 चीजें एक साथ हो रही है। और वो कोई एक दिन में नहीं करते थे, धीरे धीरे उनको ट्रेनिंग ही उस तरह से दिया जाता था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहते थे। और वो सब ब्रह्मचारी रहते थे उस आश्रम में, बचपन से चले जाते थे 25 साल की उम्र तक, फिर गृहस्थ में प्रवेश करते थे। तो सबसे पहला अमृत वेला पावरफुल, दूसरा बी रिलैक्स्ड। रिलैक्सेशन इज रिकलेक्शन। अगर रिलैक्स्ड नहीं है माइंड तो जो आता है वो भी सब भूल जाता है हड़बड़ी में। ये क्या, ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं, ये करूं, वो करूं, ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये भी पढ़ लेता हूं, वो भी पढ़ लेता हूं, और फिर टाइम पर कुछ भी याद नहीं आता। कॉन्फिडेंस, स्वयं पर विश्वास। इफ यू हैव फेथ इन ऑल द 33 मिलियंस ऑफ गॉड एंड इफ यू हैव नो फेथ इन योरसेल्फ यू विल फेल। अगर 33 कोटि देवी देवताओं पर विश्वास है पर स्वयं में विश्वास नहीं है तो सफलता तुम तक नहीं आएगी, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहीं लिखा है, कहा है। स्वयं में विश्वास पहला निश्चय कौन सा है? स्वयं में। दूसरा फिर बाप में, तीसरा फिर ड्रामा परिवार वो सब बाद में। फर्स्ट निश्चय कौन सा है? मैं कौन, उठते ही क्या करो। अभी अभी मुरली देखी ना हमने, 31 दिसंबर 1970, दिनचर्या। सबसे पहला संकल्प अमृत वेला मैं कौन, उठते ही मैं कौन, अमृत वेला मैं किसका, ये सब देखा ना उस दिन हमने। पोस्ट अमृत वेला मूर्ति वाला, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। कॉन्फिडेंस किस में? खुद में। मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद रहेगा और वो परिस्थितियों में भी अपने आप उभर कर आएगा वो महावाक्य। जैसे इस ब्रह्मचारी का सुनाया, वो भी पहले बेचैन था पर रात भर लॉकअप में था, उसके बाद में भी बेचैन था पर जब वो उस अम्मा से मिला उसके बाद में वो शांत हो गया। ये मेरे साथ होना ही था, इतना श्रेष्ठ उद्देश्य था फिर भी हुआ, कुछ नहीं कर सकते। साधु आया है, राजा ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, तुमने चोरी की है, कुछ नहीं बोलता है, चुप। एक हफ्ते के बाद साधु को छोड़ दिया, सच्चा चोर दो था वो पकड़ा गया। साधु कहता है ठीक है मैं जाता हूं। राजा कहते हैं रुको, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, प्रतिकार क्यों नहीं किया जब तुमने चोरी की ही नहीं थी, तुमने कोई पाप किया ही नहीं था। वो क्या कहता है, पाप तो मैंने किया था और यह सजा उसी की थी, पर राजन ये मेरे किसी और जन्म का पाप था, इस जन्म का नहीं। तो किस किस जन्म में हमने क्या क्या कर रखा है हमें कुछ पता नहीं, पर इस छोटे से युग में वो सारा चुप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी पुण्य का बल है। तो वो सूली से काटा कम हो जाएगा, पर होगा तो जरूर, छूटेगा उससे कोई नहीं। वो परिस्थितियां भी आएगी, लौकिक वाले पेपर भी आएंगे और ये पेपर भी आएगा कल, ठीक है। तो अमृत वेला, रिलैक्सेशन, कॉन्फिडेंस, और अगला डोंट पैनिक, पैनिक नहीं करना है। एंजाइटी अटैक्स आते हैं लोगों को एग्जाम के टाइम पर, क्या होता है एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स कहते हैं। हॉस्पिटल में हर हफ्ते में एक पेशेंट तो आता ही है पैनिक अटैक के साथ, यंग होता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ज्यादा फीमेल्स होते हैं, एकदम घबराहट, सांस फूल रही है और उसके साथ तीन चार लोग तो रहेंगे, या तो बेहोश पूरा, और फिर जाग जाते, उनको कहो इंजेक्शन देना पड़ेगा, नहीं 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 जाग ही जाते सीधा, या कुछ सुंगा दो, बिल्कुल चिमटी करो कुछ भी करो फिर भी उठ रहे हैं एकदम बेहोश, और जैसे कुछ सुंगा देते फिर जाग जाते। पैनिक अटैक्स, और उसमें अटेंशन सीकिंग भी होता है थोड़ा सा, और ये एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा होता है। अचानक से बुखार आ जाता है, अचानक से सिर दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होता है, और वो रियल होता है, ऐसा नहीं कि वो ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, ना ना, रियल सही में 101 बुखार रखेगा, एग्जाम फीवर, एग्जाम फीवर, एकदम कुछ कुछ होने लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में एक भय घुस जाता है और वो रिएक्ट करता है व्यक्ति, वो बाहर निकलता है, रियल होता है, शरीर में ऐसे कंपन होने लगते हैं। कई बार एग्जाम जाने तक ठीक रहता है, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश किया तब भी ठीक रहता है, जैसे पेपर सामने आता है और पहले तीन चार प्रश्न देखते हैं तो एकदम पसीना छूट जाता है, और तब तो और ज्यादा टेंशन आता है, जब सब लोग आराम से लिख रहे हैं और हम को ऐसा लग रहा है कि इसमें से हमें कुछ भी नहीं आता। उसके बाद में अगला एंजॉय करना है, पेपर को क्या करना है एंजॉय, एग्जामिनेशन को क्या करना है एंजॉय करना है, दुखी नहीं होना है, टेंशन में नहीं आना है, ठीक है। ये एग्जाम, फिर दूसरी एग्जाम, ऐसी कितनी एग्जाम्स आती रहेगी जीवन में, ये कोई एकमात्र एग्जाम थोड़ी ना, कोई अंतिम थोड़ी ना है, ऐसी कितनी एग्जाम्स आएगी, इसलिए एंजॉय करना है उसको भी, इस एक्सपीरियंस से गुजरना है एग्जाम देने के, थोड़ी बचपन की भी यादें आ जाएगी, अच्छा है, कॉलेज की यादें, बचपन की यादें, स्कूल डेज की यादें सब आ जाएगी, पर टेंशन नहीं लेना कुछ भी, पर एग्जाम में थोड़ा टेंशन तो फिर भी होता ही है कितना भी कहो, क्योंकि एग्जाम के साथ बहुत सारी आशाएं जुड़ी होती है। हमें इसलिए दुख नहीं होता है कि हम फेल हो गए, हमें दुख क्यों होता है लोग क्या कहेंगे हमें इसलिए दुख नहीं होता है कि हम फेल हो गए, परंतु दुख इसलिए होता है कि हमारे साथ जो पढ़ता था उसको ज्यादा मार्क्स मिल गए। अगर सारे के सारे फेल हो जाए तो दुख तो कोई है ही नहीं फिर। भगवान से प्रार्थना भी ये करते, बाबा भगवान मुझे फेल कर दिया तो चलेगा, पर मेरे साथ सब फेल होना चाहिए तो अगली बार सब साथ में एग्जाम देंगे एंजॉय। और हम लोग कौन है, स्पोर्ट्समैन है ना, जो खिलाड़ी होते हैं वो दुखी नहीं होते हैं, ठीक है, हार जीत चलती रहती है, ये भी खेल है एक, मुरली स्पोर्ट्स इज माय पैशन, ये स्पोर्ट्स है, हम मुरली एथलीट्स है, तो ये एक पैशन है, ये एक स्पोर्ट है, इसमें ये सब चलेगा। और ये ना समझो कि जिसको बहुत ज्यादा मार्क्स मिल गए वो बहुत ही अच्छा है। एक बहन सुना रही थी, उनके सेंटर पर हर महीने में मुरली पर क्विज होती है, तो जो बहन सबसे टॉप आती है हमेशा और सबसे एजुकेटेड है वो हमेशा दुखी रहती है, कंप्लेन करती रहती है, और जो एक छोटी बहन है जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, उसको कुछ नहीं आता है, सबसे कम मार्क्स मिलते हैं, वो सबसे ज्यादा खुश रहती है और सबसे ज्यादा संतुष्ट तो तो ये ना समझो कि ज्यादा ज्ञान है तो ज्यादा खुश रहेंगे, ज्यादा मार्क्स मिल गए जो उसमें तो अहंकार आने की कितनी संभावना है। धारणाओं का भाषण से कोई संबंध नहीं है, धारणा का इस एग्जाम से भी कोई संबंध नहीं है। ये एक यात्रा है, इस यात्रा को एंजॉय करना है। इस यात्रा में डेस्टिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो जर्नी है ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक युवक एक बूढ़े व्यक्ति से मिलता है और उसको गुरु जैसा लगता है। वो जिम्नास्ट है, वो स्वप्न में देखता है कि मेरा पैर टूट गया, और एक व्यक्ति एक बूढ़ा व्यक्ति वो मेरे टूटे हुए पैरों के जो टुकड़े है ना वो झाड़ रहा है, हड्डियां, एकदम डर जाता है। वो तो जिम्नास्ट है, जिम्नास्ट, उसको ओलंपिक में भाग लेना है। और फिर ऐसे घूमते हुए उसे एक आदमी दिखता है, एक रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति, वो वही जूते होते जो उसने स्वप्न में देखे होते। ऐसी स्टोरी है। तो वो उसे जो भी बातें करता है ना, इतनी रहस्यमय बातें होती है सारी। वो बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि आपको देखे जैसा लगता है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है मुझे तो नहीं लगता। वो कहता है कि मुझे तुमको कुछ पूछना है तो पूछो। बूढ़ा व्यक्ति को तो मुझे कुछ नहीं पूछना, मेरे पास सब है, मेरे पिता बहुत अमीर है, सब है मेरे पास। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है तुम इतने बेचैन क्यों हो फिर? वो बोलते मैं थोड़ी बेचैन हूं। तो बोलते फिर आधी रात को यहां क्या कर रहे हो मेरे पास, जाओ घर। तो ये इस तरह से दोनों के इंटरेक्शन होते हैं, एकदम रहस्यमय। और एक बार, और फिर एक बार वो बूढ़े व्यक्ति के पास फिर जाता है। अचानक दोनों की कभी ना कभी मुलाकात होती है, वो ना चाहते हुए भी। और फिर उसको कहता है, बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज दूंगा, पर वो यहां नहीं है, पहाड़ी के ऊपर है, और वह ऐसी चीज है तुमने कभी देखी नहीं होगी आज तक। वो कहता है ठीक है। वो पूरा अपना ट्रैकिंग बैग, शूज, सब कुछ, क्योंकि यात्रा 4 घंटे ऊपर चढ़ना है पहाड़ी पर एक। तो दोनों चलते हैं, बूढ़ा व्यक्ति तो बहुत एक्टिव है, वो आगे ये पीछे, वो दोनों चलते हैं। पूरा थक जाता है 4 घंटा, और कहता है क्या क्या दिखाना है यहाँ पे? तो जो जवान खड़ा है ना, वो कहता है उस, वो एक पत्थर के ऊपर खड़ा होता है, छोटा सा पत्थर। बूढ़ा व्यक्ति कहता है ये, मतलब क्या ये होता है? बस यही, ये तो पत्थर है, तो बस यही दिखाना था। तो इस पत्थर में ऐसा क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल पत्थर है, ये पहाड़ी पर पड़ा था। तो तुम कहते ये दिखाने तुम मुझे यहां लाए थे 4 घंटा ऊपर? बूढ़ा व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, चुपचाप आगे निकल जाता है, खड़ा हो जाता है। और उस जवान को, उस जिम्नास्ट को अचानक स्ट्राइक होता है, डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जर्नी इंपॉर्टेंट है। वो 4 घंटे जो चढ़ा, वो जो मेहनत की, वो एक नया अनुभव था, चढ़ने का अनुभव। वहां कुछ भी नहीं था देखने का, पर ये जो चढ़ना था ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बाबा ने मेडिटेशन के लिए मेडिटेशन शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, यात्रा का प्रयोग किया। ये याद की यात्रा है। ये यात्रा में संपूर्ण, अगर कल सुबह हम शाम को 6 बजे अव्यक्त फरिश्ता बन गए, इसमें क्या मजा है? मजा किसमें है? इस यात्रा में आनंद है, इस यात्रा में। तो वैसे एग्जाम के सारे प्रश्न अगर आपको दे दिया जाए अभी, और ये उत्तर है, और आप टॉप आ जाओ, उसका क्या मतलब है? कईयों ने मुझे मैसेजेस किए, प्लीज हमको 1-2 क्वेश्चंस बता दो। हमने कहा श्योर, क्यों नहीं, कल सुबह 5 बजे सब बता देंगे फुल। जो भी इच्छा है वो पूरी तो करनी पड़ेगी ना। उसके बाद में अगला, फीलिंग्स को स्टेबल रखना है, इमोशनल स्टेबिलिटी। कोई भी परिस्थिति आती है तो क्या चाहिए? फीलिंग्स बहुत स्टेबल चाहिए। हमारे जज्बात जो है ना, हाइपर में नहीं, हाइपर नहीं हो जाना एकदम। कीप इमोशनल स्टेबिलिटी। उसके लिए आफ्टर, बिफोर, पोस्ट, ऑल 3 स्टेजेस में, उसके लिए तो बेस्ट मेथड इज एक वो बॉडी स्कैनिंग वाला जो है ना। जैसे अभी डर लग रहा है, तो डर में क्या होता है? धड़कन बढ़ जाती है। तो उस धड़कन को साक्षी होकर देखते रहना, अपने श्वास को साक्षी होकर देखो और धड़कन की आवाज को साक्षी होकर सुनो, अपने आप शांत हो जाता है। अचानक कुछ हो गया, अचानक न्यूज आ गई कि जिससे हम प्रेम करते थे, जो हमारे बहुत करीबी था, वो गया। शॉक लगता है एकदम से उस टाइम, तो फीलिंग्स को स्टेबल, और लास्ट नींद बहुत अच्छी होनी है। एग्जाम से पहले अच्छी नींद कर लो, इसलिए पढ़ने का टाइम आज केवल 5 बजे तक का है, उसके बाद में एंजॉय है पार्टी जो करना है करो, पर मुरली को हाथ नहीं लगाना, फिर 5 बजे के बाद छोड़ देना, भले क्लास सुन लो, कुछ सुनना है तो सुन लो, बट डोंट टच, स्टडी के हिसाब से, जैसे अभी स्टडी कर रहे हैं ना उस हिसाब से, जस्ट गिव अप, छोड़ दो, फिर कुछ और करते रहो, समर्पण कर दो ठीक है। तो ये 7 बातें है, ए फॉर अमृत वेला, बहुत पावरफुल, चाहे लौकिक एग्जाम, आईएएस की एग्जाम ही क्यों ना दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वो प्रश्न ही ऐसे पूछेंगे। हमें याद है हमारी जब एमडी की एग्जाम थी और वाइवा था, तो हम गए तो बैच लगा हुआ था, तो वो पूरा वाइवा उस बैच की तरफ ही चला गया अच्छा ये क्या है, हमने कहा ब्रह्मा कुमारी इसका है, अच्छा तो वहां हो, वो कहाँ है, तो वहां माउंट आबू में, और क्या क्या है, वो उसमें ही पूछने लगे 2-3, और तब तक टाइम पूरा हो गया एक भी नहीं पूछा उन्होंने जो पूछे प्रश्न यहाँ के पूछे, यहाँ का वेंटिलेशन कैसा है, उसके बारे में प्रश्न पूछने लगे, उसको थोड़ा सा मेडिकल से, फिर उनको लगा कि टाइम पूरा हो गया और कहां से कहां भटक गए हम, फिर थोड़ा इधर का ही पूछ लिया, फिर वहां वेंटिलेशन कैसा है, फिर एयर पॉल्यूशन कैसा है, ये सब 2-3 प्रश्न में लपेट दिया, काम पूरा हो गया। तो अमृत वेला पावरफुल, जो भी एग्जाम दे रहे हो उसके पहले दिन का। दूसरा भी रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड रहना है, उस टाइम पे पढ़ना ही नहीं है, किताब हाथ में रखना ही नहीं है। अगर लौकिक एग्जाम भी देने जा रहे हो तो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर देखते हो लोग कैसे पढ़ते रहते हैं, बैठ के किताबें बुक्स पढ़ के पढ़ते, ये भी इंपॉर्टेंट, वो भी, अगर कोई नया कुछ बोल देना, अरे ये तो मेरा पढ़ा ही नहीं है, कहां कहां बताओ, फिर तुरंत वो खोल के पढ़ेंगे, छोड़ दो, कुछ नहीं करना वहां, और एग्जामिनेशन सेंटर पे थोड़ा 1 घंटा पहले ही पहुंचो, यहां तो चलो कल 15 मिनट पहले पहुंच जाना, कल इधर, कल यहां लाइव एग्जाम होगी ना, तो कल यहां 15 मिनट 4:45 बजे तक यहां पहुंच जाना है, ठीक है, 4:45 जैसे ही अमृत वेला गीत बज खत्म होता है उसके बाद। और वो एग्जाम में जब जाते हैं तो वहां पे आईडी कार्ड लेके जाना होता है, आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ तो उसकी जरूरत नहीं है, पर बता रहे हैं कि आइडेंटिटी वो बताएंगे पढ़ के, पर वहां पर जो एग्जाम वो देने जाते हो आजकल, वहां पे कम से कम 2 या 3 आईडी कार्ड तो लेके जाने, 2, नहीं तो फिर कई बार वो चेहरा मैच नहीं करता है, कई बार ऐसा भी देखा है हमने, वहां गए इतने पैसे भरे एग्जाम दिए और एग्जाम के टाइम पर वो आइडेंटिटी कार्ड मैच नहीं कर रहा है, घर भेज देते, बहुत ही बेरहमी से, अंदर नहीं लेके जाने देते, आपको बैठने नहीं देते एग्जाम के लिए, और एग्जाम के थोड़ा पहले ही जाना है, और अगर 1 घंटे का पेपर है तो टारगेट रखना है कि 45 मिनट्स में पूरा हो जाए, 15 मिनट्स रिवीजन के रखने हैं, इतनी स्पीड होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं, अच्छा ये लाइन है क्या हो सकता है इसका, 15 मिनट एक को ही लगा दिए और लास्ट के 10 बज गए, ये नहीं, फास्ट, यू हैव टू बी फास्ट। और जो जो नहीं आता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस ये टीम ने बनाए हैं, पूरे आप रिव्यू कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं क्वेश्चंस, अगर नहीं आता है तो आगे बढ़ जाओ, नहीं आता है तो आगे बढ़ जाओ, बट फास्ट 45 मिनट्स में तो पेपर हो जाना चाहिए, लास्ट 15 मिनट्स रखने हैं खाली रिवाइज करने के लिए। और आपका अगर उससे भी पहले हो जाता है, कोई ऐसे महारथी है कि जिनके 20 मिनट में पेपर हो जाता है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बैठ के योग करो, एक एक प्रश्न को देखो, वो मुरली को पूरा याद करो, रिवाइज करो, किरने लो, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, ये बुक के बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, जिन्होंने एक एक लाइन पढ़ ली है, एक बार भी आंखों के सामने से गया है 100%, और पेपर हमने बहुत सिंपल सेट किया है, वो जो सोचा था ना कि डिफिकल्ट वाला, वो अगली बार के लिए रखा है, हाँ इंग्लिश वाला थोड़ा टफ रखा है, पर हिंदी वाला बहुत सिंपल, जिन्होंने इसको एक बार पढ़ा है पूरा ध्यान से अच्छे से, टारगेट 100% मार्क्स, फुल 50, तो उनका पेपर तो 20 मिनट में ही पूरा हो जाएगा, तो वो अगले टाइम क्या करना है, पर सबमिट नहीं करना है, फिर से रिवाइज करो, मुरली को रिवाइज करो, उसको देखो, उसके साथ योग की ड्रिल बनाओ, कुछ बाबा से कनेक्ट करो, और देखो वही पेपर जीवन में आ जाए तो क्या करेंगे, वगैरह वगैरह, ऑप्शंस देखो दूसरे क्या क्या है, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, सोचो बाबा ने ये कब चलाया, कब बोला, ये क्यों नहीं बोला, वो क्यों नहीं, इस तरह। हाँ, तो दो प्रकार के, एक तो हिंदी में पेपर दे सकते हैं, और आपके पास अगर टाइम है तो 24 घंटे के अंदर इंग्लिश में भी दे सकते हैं, और दोनों के क्वेश्चन सेट्स अलग अलग है। इंग्लिश की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी ज्यादा रखिए, हिंदी का बहुत सिंपल रखा है, ठीक है। आई विल टेल यू ऑल द मैनुअल इज देयर, आई विल जस्ट गो टू दैट। सो फर्स्ट वी विल फिनिश दिस। आज एक नई चीज बताएं, तो ये हो गया एग्जाम के बारे में, एक नई चीज आज बता रहे हैं, इसको कहते हैं लर्निंग पैरामिड, ट्रायंगल, पिरामिड, लर्निंग पिरामिड। हम कब सीखते हैं? सबसे पहले अगर कोई क्लास करा रहा है और हम बैठ के पढ़ रहे, सुन रहे, तो हमारा लर्निंग कितना होता है? केवल 5%। बस क्या याद रहता है? ये क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया क्लास थी। इसमें लर्निंग कितना हो रहा है क्लास से? केवल 5%। बस क्योंकि सुनाने वाले अपने विचार सुना रहा है, वो अपना चिंतन सुना रहा है, हम क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। और सुनते समय भी बुद्धि कहाँ है? यहां वहां भटक रही है। तो लर्निंग में नेशनल लर्निंग एकेडमी इंस्टीट्यूट, उन्होंने ये ट्रायंगल पिरामिड बनाया हुआ है। तो 5% लर्निंग किससे होता है? लेक्चर से। पर यदि हम कुछ पढ़ते हैं तो लर्निंग कितना होता है? 10%, थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना, हमारी आंखें देख रही है, शब्दों के ऊपर जा रहा है, सो वी आर मोर सेंसेस आर एंगेज्ड। और वहां तो सुनते समय तो कब नींद आ जाती है, आंखें खुली है परंतु नींद में है। ये एक दूसरी टेक्निक है सोने की, एक है ये और एक ये, मतलब क्लास सुन रहे, जो क्लास करा रहा है उसके तरफ ही ध्यान है पूरा, परम नींद में फुल, आंखें खोलकर, जैसे राजयोग आंखें खोलकर करते हैं ना, वैसे ही नींद आंखें खोलकर की जाने वाली नींद, इसकी कठिन परिश्रम के बाद ये अवस्था प्राप्त होती है। ये ऐसे ही नहीं होता है, इसके लिए बहुत गहन अध्ययन अभ्यास की आवश्यकता होती है, सालों साल के पुरुषार्थ के बाद इसमें महारत हासिल होता है कि आप क्लास में भी बैठो, सो भी जाओ और आंखें भी खुली। रीडिंग से 10%, फिर ऑडियो विजुअल अगर है तो 20% हमारी लर्निंग होती है, सुन भी रहे हैं पढ़ भी रहे हैं तो ज्यादा होता है, ऑडियो विजुअल दोनों चीजें हो रही है साथ साथ, तो यहां 20%। अगर कोई डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, कोई ब्रेन जिम करा रहा है, ये ऐसा करो, अगर यही ब्रेन जिम टेक्स्ट बना दिया और लिख दिया, एक किताब बना दी एक ही ब्रेन जिम की, 10 बार पढ़ो फिर भी समझ नहीं आते, अच्छा उंगली इधर करना, फिर दाएं इधर करना, फिर बायां उधर करना, फिर ये इधर करना, पढ़ लिया याद रहता है क्या? नहीं। पर डेमोन्स्ट्रेशन अगर करा दिया, किसी ने सामने बैठ के सिखा दिया, सामने बैठ के सिखाया, तो तुरंत हम सीखते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन, ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेट। इसलिए कई सारी चीजें क्या करनी है, डेमोन्स्ट्रेशन से हम ज्यादा सीखते हैं, 30%। 50% हम किससे सीखते हैं? जब डिस्कशन होता है, बहुत भयंकर वाला एक्टिव डिस्कशन होता है पूरा, उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। बच्चों को सिखाना है ना, तो उनको एक टॉपिक दे दो और 4 बच्चों को बिठा दो गोल राउंड में, उनको बोलो इस पर डिस्कस करें, भारत महान क्यों है, डिस्कस करो, दे विल डिस्कस, कोई भी एक टॉपिक दे दो उनको एंड एंगेज देम इन डिस्कशन, डिस्कशन डिबेट्स, इसमें बहुत सीखता है व्यक्ति, हेल्दी डिस्कशन। उसके बाद में है फिर प्रैक्टिस डूइंग, आप डायरेक्ट करते हो वो जो सिखाया गया, उसमें लर्निंग होती है 75%। और सबसे ज्यादा लर्निंग किसमें होती है? 90% जब आप वही चीज दूसरों को सिखाते हो। आपने अभी भी सीख लिया, जैसे आपने ब्रेन जिम सीखा, तुरंत आप जाके दूसरों को कहते हो कि ये ऐसा करना चाहिए। तो दूसरों को सिखाना, अगर कोई नहीं है तो इमेजिनरी ऑडियंस, अगर कोई नहीं है तो आईने के सामने खुद ही अपने आप को सिखाओ, तो यू विल लर्न फास्ट। तो इसको कहते हैं लर्निंग पिरामिड। सबसे कम कहां है? लेक्चर्स। अगर हाँ, अगर लेक्चर सुन रहे तो अपने आप को फिर एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व करो, नोट्स निकालो, एंगेज करो अपने आप को, देखो, बहुत सारी चीजें करो उसके साथ, रीडिंग, और ये सारा एक साथ कंबाइन कर दिया तो फिर क्या होगा? तो सब कंबाइन कर देना है, लेक्चर सुनना भी है, रीड भी करना है, ऑडियो विजुअल भी करना है, डेमोन्स्ट्रेशन भी करना है, डिस्कशन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, सिखाना भी है, सब एक साथ जोड़ दो, सुनना और देखना। जैसे वो मुरलियों को ऑडियो भेजा है ना, ऑडियो सुन रहे हैं और साथ में मुरली सामने रखी है, ये ये पढ़ भी रहे और सुन भी रहे, पढ़ भी रहे सुन भी रहे, ये भी एक मेथड है, इसको भी यूज किया जा सकती है। एक दूसरी मेथड है कि हम सुन रहे और उसको साथ साथ इमेजिन करते जा रहे, पढ़ नहीं रहे पर इमेजिन कर रहे, विजुअलाइज कर रहे, IWM मैं उसमें हूं डायरेक्ट उसी में। 1970s की मुरलियां चल रही है ना, कहां चल रही है, हिस्ट्री हॉल, तो सारी मुरलियां कहां बैठ के सुननी है, हिस्ट्री हॉल में। कहां बैठना है वो स्थान भी देख लो अपना, कि मैं यहां बैठा हूं, हाँ तो नीचे बैठा हूं, आधा घंटा हो गया, अभी पैर में थोड़ा दर्द भी हो रहा है, वो भी थोड़ा अनुभव करो, कहां दर्द हो रहा है, लाइव होना चाहिए सारा। तो दिस इज कॉल्ड लर्निंग पिरामिड। तो सारी मेथड्स यूज करो, जहां से जितना सीख सकते हो हर मेथड को यूज करो। बाबा ने भी यही किया है, सारी मुरलियों में ये सब सिखाया है, पर इनडायरेक्टली सिखाया सब जगह, आज की भी मुरलियों में ड्रिल कराई है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आती है। तो अभी कल का जो टेस्ट है उसका एक मैनुअल है, इंस्ट्रक्शंस, वो मैनुअल बता रहे हैं, ये इंग्लिश में है, फिर दोपहर में ट्रांसलेट करके हिंदी में भी डाल देंगे। सबसे पहला तो कल की जो टेस्ट देनी है उसके लिए ईमेल आईडी कंपलसरी है। अभी तक लगभग 2000 से भी ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो आपके टक्कर में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, एक ही, मैं खुद, ये मेरे से लड़ाई है, किसी और से थोड़ी ना है, मेरा किसी और से क्या कंपैरिजन, मुझे अपने से आगे जाना है, मुझे अपने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने, दूसरों के नहीं, मेरा जो पिछला रिकॉर्ड था ना वो मुझे ब्रेक करना है। तो ईमेल आईडी कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि यही ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हो। फिर एग्जाम लिंक एंड वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक ही बार रजिस्ट्रेशन है, और रजिस्ट्रेशन एक बार हो गया उसके बाद में फिर आपको उसमें चूज करना है, हिंदी में देनी है एग्जाम की इंग्लिश में देनी है। हिंदी में तो हिंदी में पेपर आ जाएगा सामने, फिर वो हिंदी का पूरा, और एक बार लॉग इन कर दिया तो आपको वो पूरा पेपर देना है। फिर अगर बीच में नेट ऑफ हो गया, कुछ हो गया, तो कहे फिर नेट ऑन चाहिए, ठीक है। नहीं, वो कॉपी वो सब नहीं करना है, और चीटिंग नहीं करनी है, नहीं तो लोग पहले फेक आईडी से करते हैं, पूरा एक बार क्वेश्चन देते फिर दूसरे आईडी से वापस करते, दो मेल आईडी फेल हो गए तो दूसरे से वापस तो चार चार आईडी, वो सब चीटिंग यहां नहीं चलेगी। अरे पर जिसको करना है वो तो करेंगे, उसमें कुछ नहीं कर सकते अभी उसका, पर ये कोई जो लायन वाली ट्रॉफी जो दे रहे हम इस एग्जाम में टॉपर जो आ रहे उनको नहीं दी जा रही, वो जिन्होंने पूरा 21 दिन का जो क्राइटेरिया उनके लिए है वो। तो लॉगिन, उसके बाद में एक बार लॉगिन कर दिया फिर आगे गए, फिर उसके बाद में इसका जो रिजल्ट है आपने जैसे ही सबमिट कर दिया उसके तुरंत बाद सामने दिखाएगा पास या फेल, पर मार्क्स जो है वो बाद में आएंगे कितने हैं, ठीक है। और पासवर्ड आप रिसेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक घंटे का पेपर होगा, 50 प्रश्न होंगे, और 24 घंटे तक ये चालू रहेगी टेस्ट, पर एक ही बार 24 घंटे में दे सकते हैं, और हिंदी में एक बार, इंग्लिश में एक बार, एक एक बार दे सकते हैं आप चाहे तो। इंग्लिश में भी एक बार, या तो इंग्लिश में दो, या तो हिंदी में दो, या दोनों दो एक ही बार, बट ठीक है। उसके बाद में अगला है सिलेक्ट योर क्विज, स्टार्ट, हाँ तो स्टार्ट क्विज बटन आएगा उसमें, और फिर लास्ट में सबमिट बटन आएगा। ये बहुत ही सिंपल है, इतना जैसे हम बता रहे हो, कहा ना ये बताना हमेशा मुश्किल होता है, पर ये जब करोगे तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है। और आप कोई भी प्रश्न से, कोई दो चार प्रश्न और आप कोई भी प्रश्न में किधर से किधर भी जा सकते हो, पूरे दिखेंगे 50 के 50 प्रश्न सीधा, एक एक से दो पे, चार से, 10-15, जहां आप चाहे यू कैन मूव एनीवेयर। हाँ, ट्रायल में भी, वो ट्रायल वाले जो प्रश्न थे ना वो तो कॉपी पेस्ट थे, वो लुहार वेबसाइट से लिए गए थे, साकार मुरली वाले थे, वो कोई इस मुरलियों से नहीं थे, वो तो ऐसे ही, हाँ वो ट्रायल था, वो खाली देखने के लिए कि ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेन तो ये यहां से आएंगे, ठीक है। और फिर बुक मार्क कर सकते हैं, टिक मार्क कर सकते हैं, आपको लगता है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है तो उसको मार्क करके रखो और फिर वापस आना उसके ऊपर सोचने के लिए, टाइम बचा तो। और मुझे लगता है सबका बहुत, क्योंकि पेपर बहुत सिंपल है इसलिए बहुत जल्दी हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा वैसे 10 मिनट में हो चाहे 1 घंटे में हो चाहे आधे घंटे में हो, परंतु जब तक पेपर पूरा नहीं होता है तब तक उठना नहीं है, ये भी एक रूल है। टाइम पूरा नहीं होता कुछ भी करो, फिर योग करते बैठो। हाँ हाँ नो अर्ली सबमिशन, जब पेपर पूरा हो जाएगा 1 घंटा होगा तभी सबमिट करना है, अर्ली पहले सबमिट नहीं करना है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पहले हमने राइट ऑप्शन मार्क किया, ठीक है, गट फीलिंग, और जब रिवाइज करने जाते हैं तो फिर लगता है नहीं नहीं ये नहीं है ये। पहले राइट मार्क किया था, जब रिवाइज करने जाते तब गलत मार्क कर दिया, और फिर अगली बार फिर देखते, तीसरी बार तो लगता है ये है या ये है, क्या करूं क्या करूं, फिर कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो सबसे पहला अंदर से निकलता है ना वो यूजुअली राइट होता है, अंदर से गट फीलिंग उसको कहते हैं। हाँ डी फॉर बाबा, ए बी सी डी, वो जोक है ना, अरे 3 MCQ को तो बी लिख दिया, इस बार तो डी लिखना चाहिए। फिर उसके बाद में रिजल्ट, अपना जो ईमेल है उसको आप स्पाम फोल्डर में भी देखते रहना, वो उसमें जाएगा वो। हाँ उसके बाद में और क्या है, ठीक है बस, और तो कुछ खास नहीं है, भेज देंगे पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है, सिंपल ही है। हाँ सबमिट करना पड़ेगा, हाँ हाँ बस एक बार अगर सबमिट कर दिया तो बाद में नहीं कर सकते, फिर आपके छूट गए तो छूट गए, नो इट विल नॉट कम, रिफ्रेश नहीं करना है पेज को, और कोई इंस्ट्रक्शन बैक भी नहीं करना है और कुछ, हाँ दूसरा कोई विंडो नहीं खोलना है, वही विंडो रखना है। यूजुअली तो मोबाइल पे देंगे मैक्सिमम लोग, जो लैपटॉप कंप्यूटर पे देंगे वो भी ठीक है, हम मिनिमाइज नहीं करना है उसको, और कुछ बस ना। हाँ स्क्रीनशॉट लेने की भी कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो और किसी को पेपर, क्योंकि हर एक का टाइमिंग अलग अलग है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में सब लोग अलग अलग टाइम पर देंगे ना, तो यहाँ जो दिन है उधर रात हो रही है। हाँ पेपर देने के बाद नो डिस्कशन पेपर, दूसरा जैसे ही पेपर कल पूरा हो जाता है ना, और कल तो होली है, कोई डिस्कशन नहीं करना है और सेलिब्रेट करना है, क्या रॉन्ग हो गया क्या राइट हो गया इसका कोई चिंतन नहीं, ना ही कुछ किसी को कुछ बताना है, बस एंजॉय करो, ये सबसे बेस्ट है। हाँ वो जो भी है उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है वैसे देखा जाए तो। यहाँ हमने कहा ये परीक्षा, दिस इज अ नॉट एग्जाम, इज नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू फील। एग्जाम इज नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, इट्स अबाउट व्हाट इज द स्टेट ऑफ योर माइंड। ये मन की स्थिति की परीक्षा है, ना कि कितना हमारे पास ज्ञान है, उसके उससे कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, और 26 तारीख से फिर 31 तक ये जो एग्जाम है इसका डिस्कशन होगा, वो हम नहीं लेंगे आप लोग लेंगे, दो दो लोग, पहले दिन 8 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस 8 8 पांच दिन, और लास्ट दिन 10, तो दो लोग यहां पर चार चार प्रश्न लेंगे, वो जो प्रश्न होंगे वो पढ़ के आना, वो मुरली पढ़ के आना और फिर डिस्कस करना है, सेम मतलब क्वेश्चन डिस्कशन, वो 50 क्वेश्चंस पर डिस्कशन, दैट इज एम एट डिस्कशन होगा। तो दो दो लोग 8 8 8 8 8 और 10, टोटल 40-50 प्रश्न, ठीक है अगले 6 दिन तक। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम रिलैक्स्ड, फलक तू गरज तू बरस तू, धूप में छाव की एहसास तू, जीत तू जान तू जहान तू, होगा इतिहास का ताज तू, पन्नों में रहेगा माजी के। ब्रेंजिन किसको बोला था, या ब्लदर कम, पन्नों में रहेगा माजी के, माजी अर्थात पास्ट, अतीत के पन्नों में रहेगा इतिहास का ताज तू।
ओम शांति। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सचिन भाई एंड एवरीवन हियर। So I'll be taking leave also. I'm traveling to Dubai back today. So thank you for the opportunity. Yeah. So how we can remember these activities? Because I can link to the one of the affirmation we have, like I remember everything we do like this. So the first activity is related to this. But what we can do is one hand you can do clockwise, other one is anti-clockwise. So when you are rotating like this, one way this way. clockwise, anti-clockwise, and you can change the hand. So you can remember two things. One is the I remember everything, so you can link this activity. Then the second activity, we can link with our deity. One of the memory is to remember that we are becoming deity. So when you see in the mirror, so you can do a puja for your murti. So how you can do? Yeah. So one hand you can do, and the other you can see so that you are the deity and you are doing for yourself. So you can not do it. Aarti and you are the best pujari for the daily. Then the wisdom is Lord Ganesh. So when you go in the bhakti also, we go to temple and we do like this, no? So it's a panch bar. So this one is five times you can do that. And other one is we have already practiced that. This one is very simple also, like you can do the twisting which we have already. Yankee Doodle, lift it up, Yankee Doodle,
mind the music and the step that with the... कल आ जाना इधर टाइम पर 5 बजे 15 मिनट पहले ही ठीक है सामने फौज है क्योंकि इम्तिहान की है घड़ी तू तेरा अस्त्र है तू ही तेरा शस्त्र है हर घड़ी पलक तू गरज तू बरस तू धूप में छांव का एहसास तू Omshan.
Falak tu, garj tu. बरस तू धूप में छांव की एहसास तू जीत तू जान तू जहान तू हो गई इतिहास का ताज तू पन्नों में रहेगा माजिक सबको लेना साथ जोड़ के